नमस्कार दोस्तों, मोबाइल एनालिस्ट से आपका दोस्त योगेश। हमारा आज का विषय है पक्ष विपक्ष में राजनीतिक दलों का बढ़ता चंदा और जनता की घटती भागीदारी। नागरिकों को राजनीतिक दलों को के चंदे का स्रोत जानने का अधिकार नहीं। सरकार की तरफ से पेश हुए उनके वकील यानी सॉलिसिटर जनरल आर रमन्ना ने यह बात सुप्रीम कोर्ट में कही है। सवाल उठता है कि जब सब कुछ ठीक है तो फिर चंदे की जानकारी से जुड़ी जानकारी
हेलो।
जनता को साझा करने में दिक्कत क्या है? राजनीतिक शुभचिंतक और भ्रष्टाचार पर वार करने वाले राजनीतिक दल की सरकार अगर कहे तो वह जनता को नहीं बता सकती। उसकी पार्टी को चंदा देने वाले लोग कौन? आज हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं लखनऊ हाई कोर्ट परामर्श केंद्र के मध्यस्थ एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विधि विभाग के कोर कमेटी के सदस्य एडवोकेट इंद्र प्रताप सर। सर, मोबाइल लेने पर स्वागत सर आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब।
सर,
जी
राजनीति में चंदों की अहमियत
जी
और जनता की भागीदारी किस तरीके
देखिए,
से देखते हैं सर?
ऐसा है, चाणक्य ने कहा था कि
जी
कोई भी संगठन तभी चल सकता है जब तक कि उसमें जो है वित्त की व्यवस्था नहीं होगी। बिना वित्त के कोई भी संगठन नहीं चल सकता। लेकिन चाणक्य ने यह नहीं कहा था कि वित्त को इकट्ठा करने के लिए किसी भी संसाधन का आप प्रयोग कर लीजिए, एन केन प्रकार, जो भी जहां से भी जिस भी ढंग से आपको वित्त मिले वो आप वित्त इकट्ठा करिए। वित्त इकट्ठा करने के लिए एक सामाजिक, आर्थिक और व्यवहारिक रूप से जो सही हो उसी तरीके से वित्त इकट्ठा किया जा सकता है। एक जमाने में, जब पुराने, जब हम लोग बहुत छोटे थे, तो गौरतलब करिए आप, कभी देखते रहे होंगे कि छोटी छोटी पर्चियां ले लिए रहते थे लोग और कहते थे साहब जो है ये इस पार्टी का चंदा है और इसका जो है 1 रुपया या जो 50 पैसा या 2 रुपया। तो पहले तो चलता ही नहीं था,
जी
मतलब ऐसे ही लोग चंदा लोग काटते थे। तो जनता की भागीदारी उसमें दिखाई पड़ती थी।
जी
जनता अगर वो उस पार्टी से जुड़ी रहती थी तो वो कहती थी कि हाँ लाइए हम काट देते हैं, या हमको एक रसीद ही पूरी दे दीजिए हम आपको कटवा के दे देते हैं।
जी
और जिस पार्टी से वो नहीं जुड़ी रहती थी तो वो कहती थी भैया हमारा इस पार्टी से मतलब नहीं है, हम इसमें कोई चंदा नहीं दे पाएंगे। तो ये जनता की भागीदारी का एक बहुत बड़ा तरीका था।
जी
और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से चंदे दिए जाते थे। अप्रत्यक्ष रूप से चंदे ये होते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जो बड़े बड़े व्यवसायिक घराने हैं वो व्यवसायिक घराने जो है वो राजनीतिक दलों को चंदा दिया करते थे। वो राजनीतिक घराने अप्रत्यक्ष रूप से जो चंदे देते थे वो पक्ष को भी देते थे और विपक्ष को, दोनों को देते थे। क्यों?
अच्छा
क्योंकि उनको व्यापार करना है और
अच्छा
व्यापार करने की तमाम नीतियां जो सरकार बनाती है या जो बनने वाली हुआ करती थी, तो वो सब अपना जो लोग उनका तरीका था वो देते थे। लेकिन उस समय क्या राजनीतिक दौर जो था वो एक ईमानदार राजनीति का दौर था। उस दौर में लोग, राजनेता ईमानदार हुआ करते थे और जनता के हित को सर्वोपर रख करके और जो है उसको उठाते थे। विपक्ष में भी थे तब भी उठाते थे उसको, पक्ष में रहते थे तो उस तरीके से काम करते थे। तो कभी जनता को ये नहीं पता लगता था कि ये पैसा आता कहाँ से है और कहाँ से जाता है। लेकिन वक्त के बदलने के साथ साथ वर्तमान समय में चंदा लेने और देने की प्रक्रिया बड़ी घातक हो गई, जिसकी वजह से तमाम नियम कानून और तमाम लोग उस पर ध्यान देने लगे। जहां पहले 10 राजनीतिक पार्टियां हुआ करती थी, आज तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टियां बन गई हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो फिर भी चुनाव आयोग में पर पंजीकृत हैं और वो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और वो डमी डमी के रूप में काम करती हैं। पता लगा कि जो है जैसे मान लीजिए कोई बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसने क्या किया कि जो है वो पांच राजनीतिक डमी पार्टियों को पकड़ लिया और पांच लोग उस पर खड़े हो गए, और साहब पता लगा कि जहां एक गाड़ी चल रही है वहां पांच गाड़ियां भी चल रही हैं, साथ साथ में चल रही हैं झंडा। तो ये सब तरीके जो लोग अपनाने लगे, तो उसके बाद चंदा जमा करने की एक विशेष प्रक्रिया जो है वो अडॉप्ट करने की बात हुई कि साहब बांड लोग भरेंगे और ये देंगे पैसा और उनसे कोई पूछेगा नहीं, और ये लोग देंगे उनसे नहीं पूछेगा। लेकिन जनता जो चंदा देती है उसको तो लेने की प्रक्रिया जैसे कहीं धरातल पर दिखाई नहीं पड़ती है, ये बहुत
जी सर,
दुखद है।
जी सर। सर, जनता को इन राजनीतिक चंदों की जो जानकारी सार्वजनिक करने में जनता की जो है वो कितनी समझ बढ़ेगी, और क्या यह सार्वजनिक किया जाना चाहिए?
मेरी समझ से बिल्कुल इसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए, क्योंकि
जी
देखिए ऐसा है, जनता की सरकार है, जनता के लिए है, जनता के हित के लिए है, न कि किसी राजनीतिक घराने के लिए है, न किसी जो है किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए है। और अगर इसको उजागर, अगर इसको ओपन नहीं किया जाता है, इसको खोला नहीं जाता है, इसको सबके सामने रखा नहीं जाता है, तो ये जनता के साथ बहुत बड़ा छल है और बहुत बड़ा कपट होगा।
जी सर, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सर ने इसको लेकर कुछ चुनाव आयोग से मांगी है रिपोर्ट, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया देखते सर कि क्या जो इस राजनीतिक चंदों की जानकारी को सुप्रीम कोर्ट ने मंगवाया है, इस पर क्या सोचते सर आप?
हम तो ये सोचते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट ने मंगवाया है,
जी
माननीय सुप्रीम कोर्ट उस पर देखेगा, अगर वो देखने के बाद उनको ये लगता है कि कौन आदमी, वो तो खोल के देख सकते हैं, उनके पास तो पावर है,
जी
संविधान की शक्ति है, उसको देख करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और निर्णय देने का अधिकार उनके पास है। लेकिन मैं अगर एक पक्षकार के रूप में कहीं पर उस बहस में शामिल हूँ, एज ए वकील, एज ए अधिवक्ता,
जी
तो मेरा तो अदालत से यही निवेदन रहेगा कि
जी
साहब इसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
जी
सार्वजनिक करने से क्या होता है कि जो लोग गलत ढंग से चंदा देते हैं, गलत ढंग से चंदा लेते हैं, और उनके राजनीतिक दल उसको उन खर्चों को दिखाने के लिए बाध्य होंगे। उनको क्या इतने पैसे की जरूरत है या जरूरत नहीं है, जैसे कोई राजनीतिक दल के को पता लगा कि उसके पास बहुत पैसा है और किसी राजनीतिक दल के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, तो ये राजनीतिक दलों को आप चंदा दीजिए और वो सारे चंदे जाने के बाद
जी
जो है वो या तो सारे चंदे जो मिलते हैं वो सार्वजनिक करके वो चुनाव आयोग की जानकारी में आने चाहिए, और अगर इस देश में ये व्यवस्था हो जाए कि सारे जो चंदे राजनीतिक दल मिलते हैं, जिन राजनीतिक दलों को मिलता है, वो राजनीतिक दल अगर उस सारे चंदे मिला करके चुनाव आयोग को दे दिए जाएं, और उन चुनाव आयोग ये निर्धारित करे कि उनकी जितनी जरूरतें हैं, सभी राजनीतिक दलों की जो जरूरतें हैं अगर उसको पूरी करे, तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा सुधार होगा। मेरी समझ से एक बहुत बड़ा सुधार होगा। इस सुधार से ये फायदा होगा, एक तो ये है कि जो राजनीतिक दल चंदा, जैसे आप पर्चे छपवाते हैं,
जी
पता लगा आपने पर्चे छपवाए, अपने मन से बिल बनवाए, बिल वाउचर बनवाए, आपने बिल वाउचर बनवा के सबमिट कर दिया है, अब उसमें भी एक बहुत बड़ा घोटाला होता है, निश्चित रूप से होता होगा। अब मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हो सकता कि उसमें घोटाला ना होता होगा, चाहे जिस पार्टी का होता होगा, किसी आदमी को जहां आपने सौंपा और एक बहुत बड़ा छपने का कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन अगर यही सरकार का, जैसे जो चुनाव आयोग है उसको जिम्मेदारी दे दी जाए कि साहब किसी पार्ट किसी को ठेका दे दे, किसी को दे दे, साहब इसको छापना है, ये छाप करके बाहर निकालेगा, और आप सारे चंदे जो आपको मिल रहे हैं वो डिपॉजिट करिए,
जी
आप अपने खर्चे लीजिए, लेकिन चुनाव के खर्चे जो है आपको कोई पार्टी डोनेट कर रही है, कोई कोई व्यक्ति डोनेट कर रहा है, कोई संगठन डोनेट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप उसका कुछ भी करिए, लेकिन चुनाव के नाम पर अगर आपको कुछ मिल रहा है तो आपको उसे चुनाव आयोग को देना चाहिए और उसको सार्वजनिक करना चाहिए।
जी सर।
जी
सर क्या देश देश की जनता जो है उनको राजनीतिक चंदों से जो स्रोतों की जानकारी
जी
क्यों नहीं दी, और नहीं तो क्यों नहीं मिल पा रही है जनता को इस प्रकार के स्रोतों की जानकारी?
देखिए, ऐसा है कि जब हम कोई धार्मिक काम करते हैं तो हम खड़े होकर के सड़क पर चंदा मांगते हैं, घरों घरों में जाके चंदा मांगते हैं, हम उसको सार्वजनिक करते हैं। और पब्लिक जो चंदा देती है, 10, 20, 50 रुपए जो भी देती है, वो सोचती है कि इसका पूरा सदुपयोग होना चाहिए, और ये जानने की उसके अंदर तमन्ना रहती है कि साहब इस हमारे मोहल्ले में जो कार्यक्रम संपन्न हुआ, इसके सारे पैसे खर्च हुए कि नहीं खर्च हुए, अगर ये उसमें बचे हुए हैं तो अगली बार इसका प्रयोग किया जाए, ये जनता की उत्सुकता रहती है। लेकिन ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमारे लिए ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश के जितने भी राजनीतिक संगठन हैं वो चंदा इकट्ठा करते हैं, वो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, सरकार में बैठते हैं, विपक्ष में बैठते हैं, सांसद विधायक बनते हैं, लेकिन मेरे देश की जनता के मन में कभी ये जागरूकता नहीं आई कि साहब इनका चंदा कहाँ से आता है और वो अपने चंदे का डिटेल क्यों नहीं हमारे सामने रखते हैं। इस पर न कभी कोई आंदोलन होता है, न कोई पार्टियां, इस पर इतनी राजनीतिक पार्टियां चालाक हैं कि इस पॉइंट पर सब एक लोग एक एक हो जाते हैं, क्योंकि सबके अंदर सामूहिक रूप से वो भावना रहती है कि ये बात जनता के सामने ना जाए, और जनता उसको जानने के लिए कभी भी अपनी उत्सुकता जाहिर नहीं करती। इस मुद्दे को कोई भी व्यक्ति सामने ले ही नहीं आता कि आप अपने मोहल्ले में 10 रुपया चंदा देते हैं तो आप उसका 10 बार हिसाब मांगते हैं, और एक राजनीतिक दल जो आपके जीवन शैली को, जीवन पद्धति को, आपके जीवन में घुस करके आपको पूरी तरीके से आपके आपके अंदर इतना बड़ा बदलाव लाने का संकल्प ले रहा है, और वो उसको चंदा कौन दे रहा है, उस चंदे को जानने की कोशिश आप नहीं करते, और आप जो है स्वयं, चाहे हम हो या आप हो, ये एक हर बुद्धिजीवी का कर्तव्य है, ये कि वो ये बतावे, इस मुद्दे को उठावे लोगों को कि साहब ये कहाँ से आता है, इसका पता कहाँ से होगा, कैसे चलेगा इसका पता।
अंतर राजनीतिक दल और कॉरपोरेट द्वारा मिलने वाले चंदे पर कॉरपोरेट को किस तरीके की फायदे देते हैं, और इसमें जनता किस तरीके से इन कॉरपोरेटों का जो हित है, जनता का हित है, जनता इसको किस तरीके से समझ पा रही?
देखिए, ऐसा है कि जनता को जो लाभ दिए जाते हैं, अगर जनता गरीब है, वो रोज जो है अपने जीविकोपार्जन के लिए परिश्रम करने के लिए कहीं जा रही है, मान लीजिए 3 किलोमीटर उसको साइकिल चला के जाना पड़ रहा है, जनता ने उसको, सरकार ने राहत दे दी कि साहब आपको 3 किलोमीटर साइकिल नहीं चलाना पड़ेगा, 3 किलोमीटर जाने के लिए हम आपकी व्यवस्था कर देते हैं, अब वो प्रसन्न हो गया, अब उसको लगा कि हमें दुनिया की सबसे बहुमूल्य चीज मिल गई कि साहब हमें 3 किलोमीटर साइकिल नहीं चलाना। उसी आदमी को कोई और तकलीफ है, मान लीजिए उस तकलीफ में राहत जरा सी मिल गई, उसको प्रसन्नता होगी, साहब मुझको मिल गया, मुझको सरकार ने दे दिया, उसको लगता है कि वो सरकार जो आई उसने उसको जो दे दिया वो इतनी बड़ी चीज दे दिया कि जी अब उसके जीवन में एक बहुत बड़ा उसको दिखाने उसको एक लगा कि हमें बहुत कुछ मिल गया। लेकिन रियलिटी इसमें क्या होती है कि जो लोग राजनीतिक घर ओ सॉरी जो व्यापारिक घराने हैं, जो व्यापारिक घराना चाहे वो पक्ष को चंदा दे चाहे वो विपक्ष को चंदा दे, वो इतना बुद्धिजीवी होता है कि वो अपने हित में व्यापारिक लेन देन या जो उसके व्यापार में जो कठिनाइयां आ रही हैं, वो व्यापारिक वर्ग एक गठबंधन बना लेता है कि जो हम व्यापार कर रहे हैं इसमें हमारे सामने क्या कठिनाइयां आ रही हैं, ये सरकार जब आएगी तो इसकी पॉलिसी किस तरीके से बनाई जाए कि साहब, तो राजनीतिक घराने जो है वो व्यापारिक सॉरी ये जो व्यवसायिक घराने हैं, इन व्यवसायिक घरानों में इस बिंदु पर एकता होती है। वो भले ही कंपटीशन करते हैं लेकिन वो सरकार से अपेक्षा करते हैं कि हमें इसको इस ढंग से करना है कि साहब जो है ये हमारे पक्ष में जाए, हमको इसका लाभ मिले। तो उस बिंदु पर वो एक हो जाते हैं और वो उनको चाहे चंदा देने के लिए सत्ता पक्ष को चाहे विपक्ष को बराबर चंदा देना पड़े तो बराबर चंदा दे देते होंगे। आप ये मत समझिए कि जो है विपक्ष में बैठा हुआ है तो वो उसको चंदा कम देंगे और पक्ष में बैठा हुआ है तो उसको चंदा ज्यादा दे देंगे। मतलब चंदा देने में ये व्यापारिक वर्ग इस मामले में बहुत चालाकी करता है। ऐसा नहीं है कि जो है वो जो पक्ष में बैठा है तो उसको चंदा कम मिलेगा, विपक्ष में बैठा हो उसे चंदा पक्ष में बैठा चंदा ज्यादा मिलेगा और विपक्ष में बैठा हुआ चंदा कम मिलेगा। चंदा के आवंटन में उनको अगर अपनी कोई पॉलिसी पास करानी है, कोई पॉलिसी सरकार उनके फेवर में बनाती है, तो वो कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष को बराबर ढंग से ओबलाइज करते हैं और उसका एक माहौल तैयार किया जाता है और उसका एक सिस्टम तैयार किया जाता है कि पूरे देश में पूरे समाज में उसको प्रसारित किया जाता है और उसको इतना ढंग से प्रसारित किया जाता है कि उसका लाभ। आज मैं सवेरे अभी सोच रहा था कि हमको कुछ सामान मंगाना था,
अच्छा
मेरे लड़के ने वो एक कोई ग्रुप है उससे सामान उसने मंगवा लिया।
अच्छा
अब आप ये समझिए कि सरसों का तेल, सरसों किसान कितनी परिश्रम से पैदा करता है,
अच्छा
सरसों के पेड़ में कितने रोग लगते हैं, कितनी परेशानियां उस किसान को उठानी पड़ती है, लेकिन उसको बेचने के लिए कंपनियां सरसों का तेल जैसा लगता है कि वो कंपनियां स्वयं सरसों पैदा करके और सरसों बना करके बेच रही हैं, इस तरीके से उसका प्रचार प्रसार करती हैं और
अच्छा
उसका सारा प्रॉफिट वो लेती हैं, सारे पूरे सिस्टम का प्रॉफिट वो लेती हैं और जो किसान उसको पैदा करता है वो उसी जंगिया बनियान में रह जाता है, जिस जंगिया बनियान में पैदा हुआ है उसी जंगिया बनियान में मर जाता
जी
है। तो किसान जो पैदा करता है और व्यापारी जो उसका वितरण करता है, बाजार और मार्केटिंग करता है। आज प्याज की कीमत इतनी बढ़ गई है तो इसमें किसी किसी का दोष नहीं है, न किसान का दोष है इसमें और न पूरे किसी सिस्टम का दोष है, इसमें बीच में बैठे हुए लोगों का दोष है कि
अच्छा
वो जो है उस व्यवस्था को देखते नहीं है। अगर उस व्यवस्था को शुरू से ध्यान दिया जाए तो उसको देखते नहीं है। ये प्याज की डंपिंग हो रही है, जैसे जैसे प्याज को और महंगा कर दिया जाएगा, अब
अच्छा
इसमें विपक्ष चाहे अग्रह साहब प्याज और महंगा हो जाए, विपक्ष अपनी पूरी ऊर्जा लगा देगा उसमें और पक्ष में बैठा हुआ व्यक्ति जब अपनी उस ऊर्जा को सही करने में लगाएगा तो साहब व्यापार का व्यापारियों का एक वर्ग है ऐसा है कि उसको रोक लेता है
जी सर
और वो उसका आवंटन इस तरीके से किया जाएगा कि साहब सबको फायदा मिल जाएगा और फिर बाद में सरकार जब
जी
लगेगा कि ये प्याज अब मार्केट में लाके उड़ेल देगी तो वो सारे प्याज जो है सब बिक जाएंगे, सारे
जी
सबका दाम बराबर हो जाएगा,
जी सर।
जैसे टमाटर के
तो
साथ हुआ वैसे
ये
प्याज के
थे
साथ।
एडवोकेट इंद्र प्रताप सर, जिन्होंने मोबाइल वाणी पर राजनीतिक दलों का बढ़ता चंदा और जनता की घटती भागीदारी, इस विषय पर एडवोकेट इंद्र प्रताप सर ने अपनी प्रतिक्रियाएं मोबाइल वाणी के साथ साझा की। इंद्र प्रताप सर, मोबाइल वाणी को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर
बहुत बहुत आभार आपको।
जी। मोबाइल वाणी सबका दोस्त योगेश, धन्यवाद।